संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बारह भावनाओं के संदर्भ में धर्म भावना की चर्चा कर रही है। इसमें धर्म की अनेक प्रकार से चर्चा होने के उपरांत गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, धर्म के दो भेद हैं, उनकी बात आरंभ की थी। गृहस्थ धर्म में एक तो सामान्य गृहस्थ होते हैं जो मात्र जैन दर्शन के पक्षपाती होते हैं, उन्हें यह अच्छा लगता है, उनके चित्त को स्वीकार होता है और कोई भी विशेष बात उनके जीवन में नहीं होती है। दूसरे जो श्रावक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्ति श्रावक और दूसरे अवृत्ति श्रावक। अवृत्ति श्रावक में भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इस दो प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। और वृत्ति श्रावकों की बात चल रही थी। वृत्ति श्रावक पंचम गुणस्थान वृत्ति वृत्तियों को बोलते हैं, जिसमें पहली प्रतिमा की बात हुई थी और दूसरी जो वृत्त प्रतिमा है उसकी चर्चा चल रही थी, जिसमें पांच जो अणुवृत्त, तीन गुणवृत्त और चार शिक्षावृत्त होते हैं। अणुवृत्त उन वृत्तों का नाम है जो हिंसादि पांच पापों के एक देश त्याग रूप होते हैं। गुणवृत्त वो चीज है जो इन अणुवृत्तों में गुण पैदा करते हैं, क्वालिटी डेवलप्ड करते हैं। और शिक्षावृत्त वो चीज है जो आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। पांच अणुवृत्तों में अहिंसा अणुवृत्त, सत्यानुवृत्त, अचौर्यानुवृत्त, ब्रह्मचर्यानुवृत्त और परिग्रह परिमाणानुवृत्त की चर्चा हुई थी। अब वो कहते हैं कि इससे ज्यादा त्याग करने में मैं असमर्थ हूं। जब वे वस्तु की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से इससे आगे त्याग करने को तैयार नहीं है, बंधने को तैयार नहीं है, तो उन्हें तीन गुणव्रतों के माध्यम से काल की अपेक्षा उन्हें बांधा जाता है। और काल की अपेक्षा व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं यम और एक को बोलते हैं नियम। यम माने जो जीवन पर्यंत के लिए जो त्याग किया जाता है उसे बोलते हैं यम, और जो घड़ी घंटा दिन की मर्यादा से किया जाता है उसे बोलते हैं नियम। तब वो कहते हैं कि बोलो तुम ये बतार करो कि ठीक है, इससे ज्यादा पाप नहीं तुम छोड़ सकते हो, तो सारी जिंदगी कितने एरिया से बाहर तुम नहीं जाओगे। तो काल में ली सारी जिंदगी, इसलिए वो कहलाएगा यम। यम लिया तो उसने कहा मैं सारे जिंदगी हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा। हम सोच सकते हैं कि इससे क्या फायदा, ऐसा व्रत दिलाने से क्या फायदा है। तो वो कहते हैं जो पांच पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हम अभी सारे विश्व में करने के लिए तैयार थे, जो हमने नहीं छोड़े थे उनमें, अब इस क्षेत्र के हम बाहर नहीं जाएंगे तो कम से कम इस क्षेत्र के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर वो पाप तो हमसे नहीं होंगे ना। माने हमने हिंदुस्तान के बाहर जिंदगी भर नहीं जाएंगे तो हिंदुस्तान के बाहर जो होने वाली हिंसा है उसके भागीदार तो हम नहीं होंगे ना। वहां तो हमसे हिंसा नहीं होगी ना, वहां तो हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा ना, वहां तो किसी वस्तु की चोरी हमसे नहीं होगी, कम से कम वहां मकान तो नहीं खरीदेंगे, वहां परिग्रह भी तो नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो क्षेत्र की मर्यादा के भीतर अणुव्रत हैं, वो क्षेत्र की मर्यादा के बाहर महाव्रत के रूप में हो जाते हैं। आचार्य संबंध भद्र ने लिखा कि ये ऐसे व्रत हैं कि अणुव्रतों को महाव्रत बना देते हैं, महाव्रतायते, ये शब्द पड़ा है। महाव्रतायते क्यों बोलते हैं, महाव्रत जैसे हो जाते हैं ये क्यों बोलते हैं, तो सीधा बोलो ना महाव्रत हो जाते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्यों कि महाव्रत होने के लिए तो प्रत्याखाना वर्ण कषाय का त्याग होना चाहिए। तो यहां तो वो कषाय का त्याग हुआ नहीं है, क्षेत्र जिस एरिया में हम नहीं गए वहां पांच पाप नहीं हुए, इस दृष्टि से हमने महाव्रत जैसे हो जाते हैं कहा। अब उन्होंने देखा कि जब हमने ये कहा कि जिंदगी भर तुम कितने क्षेत्र के बाहर नहीं जाओगे, तो इसने पूरा हिंदुस्तान रख लिया। यद्यपि ये पूरे हिंदुस्तान में कभी जाने वाला नहीं है, हो सकता सारी जिंदगी भी ना जाए, फिर भी क्योंकि जीवन भर का सवाल है, जितना काल हम लंबा देते हैं उतना ही वो क्षेत्र लंबा कर लेता है। तो कहा भाई छोड़ो, एक बरस तक तुम कितने एरिया के बाहर नहीं जाओगे, तो क्योंकि जब एक बरस की मर्यादा लगाई ना तो उसे बोलते हैं नियम, नियम लो, अपन बोलते हैं नियम ले लो, और यम ले लो माने सारी जिंदगी के लिए ले लो। कोई व्रत सारी जिंदगी के लिए लिया जाता है तो उसे बोलते हैं यम, और जो काल की मर्यादा से लिया जाता है उसे बोलते हैं नियम। तो उसने कहा कि एक साल की बात है कि हाँ, तो सोच के जवाब देता है कि एक साल तो मैं राजस्थान के बाहर भी जाने का कोई विचार नहीं है, क्या मेरा व्यापार कोई राजस्थान के बाहर तो है ही नहीं, कोई काम भी नहीं है, और शिखर जी जाने का भी विचार नहीं है, तो एक साल का तो मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा। जो स्थिति हिंदुस्तान के बाहर थी पांच पापों की, वो एक वर्ष के लिए सारे राजस्थान के बाहर होगी, होगी ना, तो और हमारे पाप छूट गए, हम उन्हें तो पाप छुड़ाना उद्देश्य है। फिर कहा ठीक है, एक माह तक कहां नहीं जाओगे, एक माह तक मैं जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगा। तो जो स्थिति दिग्व्रत में सारे हिंदुस्तान के बाहर थी पांच पापों की, त्याग की, वो स्थिति एक महीने के लिए जयपुर के सीमा तक आ गई, तो कितने बड़े पाप से हम बच गए। और फिर कहा अच्छा एक दिन की बात करें तो कटोरा मर स्मारक भवन के बाहर नहीं जाऊंगा, इसमें क्या है। तो एक दिन के लिए हम इस टोडामर स्मारक भवन के बाहर होने वाले पापों से बच जाएंगे, मैं हम बाहर चलते फिरते यदि तो चींटियां मरती हमारे पैर के नीचे आगे के नहीं, हम उसके मर्यादा के बाहर जाएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से जो चीज हम जीवन पर्यंत के लिए नहीं त्याग सकते थे, उसको हमने देश व्रत के माध्यम से उसे और काल को कम कर करके यहां तक ले आए। तो फिर आप कहेंगे कि इससे फायदा क्या हुआ, एक दिन बाद तो फिर हम इसके बाहर निकलेंगे ना, महीने भर बाद तो हम जयपुर के बाहर निकलेंगे, एक बरस बाद तो हम राजस्थान के बाहर निकलेंगे। कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम कहते हैं कि तुमने एक बरस का लिए नियम लिया ना, जब तो एक बरस पूरे हो तो फिर लेना एक बरस का नियम। कितने का, तो तुम राजस्थान और मध्य प्रदेश दो रख लेना, अथवा और कम कर लेना कि जयपुर जिला रख लेना। तो ऐसे ही हर वर्ष, हर माह और हर दिन हम नियम करते जाएंगे तो बहुत छोटा एरिया ऐसा रह जाएगा कि जिसमें हम सीमित रूप से रहेंगे और उसके बाहर के झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह के पाप हमसे नहीं होंगे। इसे बोलते हैं देशवृत्त। तो इसने कितने पापों से हमें बचा दिया। अब फिर वो ये कहते, देखो भाई इतना ध्यान रखना, नहीं जाने का मतलब क्या है। ऐसा तुम करो कि हमने प्रतिज्ञा तो कर ली कि हम हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे, और रोजीना फोन से अमेरिका बात करो और वहां से ये भेज दो, ये बुला दो, ये ला दो, ये नहीं चलेगा। ये बोलते हैं वो दिग्वृत्त का अतिचार है, ये दोष लगेगा, क्योंकि तुम नहीं गए, तुमने किसी को भेजा ना। जाना और भेजना एक ही बात है। जब हम कहते हम नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे तो भेज भी नहीं सकते, और जाने वालों की अनुमोदना भी। जेंद्र में कितनी बारीकी है। वो कहते कृत कार्य तो अनुमोदना का एक सा पाप है, चाहे हमने किया चाहे हमने कराया, और ना किया और ना कराया। लेकिन यदि वो हो गया पाप, किसी दूसरे ने किया, तो हमने कहा बहुत बढ़िया किया तुमने, तो कहते उसको बराबर पाप है। तो तुम मन वचन काय वो कृतकारित अनुमोदना से उसका त्याग करो। तो समझ लो कि आपने प्रतिज्ञा ली, अभी आपको बहुत आसान लग रहा था क्या कि मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है, जाना तो है ही नहीं। तीन दफे वीजा की ट्राई कर चुका हूं और मिला ही नहीं है, और अब तो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया है, तो मिलने का सवाल नहीं है, इसलिए जाना ही नहीं है, तो ले लो प्रतिज्ञा। ऐसी पोल पट्टी नहीं चले। नहीं जाने का मतलब है सब प्रकार के संपर्कों का तोड़ना। ऐसा उदाहरण दिया है कि आप मर्यादा के बाहर से पत्थर नहीं फेंक सकते। उस जमाने में पत्थर ही की बात होगी जब ये बात शायद लिखी गई होगी, लेकिन आज तो हम यहां से अणुबम फेंक सकते हैं ना, सैकड़ों मील तक कोई चीज फेंक सकते हैं ना, किसी को हिंसा कर सकते हैं ना। तो हिंसा से बचने के लिए तो ये वृद्ध लाए थे, और तुमने वो हिंसा चालू रखी तो तुम यहां से जो पत्थर वहां फेंकोगे, वहां उसे जीव मरेंगे, उसका क्या होगा। हिसाब पहले से आप कहते तो हम लेते ही नहीं, इसलिए तो पहले ही से बता रहे हैं ना कि अच्छी तरह समझ लो किसी क्षेत्र के बाहर नहीं जाने का मतलब ये है, खुद नहीं जाना, किसी को भेजना नहीं, और जाने हुए वालों की अनुमोदना नहीं करना, उन्हें रास्ता नहीं बताना। अब ऐसे ही हर एक में लगाना, आपने राजस्थान के बाहर लिया, आदमी स्मारक के बाहर नहीं जाऊंगा आज दिन भर, इसका मतलब बाहर वाले आदमी को आवाज दे के बुलाना, बाहर आदमी को भेजना, उससे बात करना, ये भी नहीं होगा। तब तो आपका वहां से कनेक्शन कटेगा, तब तो वहां से आप हिंसादी पापों से बचेंगे। पहले तो आपको ये व्रत बहुत सीधा सरल लग रहा था, और अब तो बहुत भारी लगने लगा। तो कहते हैं सोच समझ के मर्यादा लेनी चाहिए। न जाएंगे, न भेजेंगे, न अनुमोदना करेंगे, और न मन से, न वचन से, न काया से, न शरीर जाएंगे, शरीर तो नहीं गए, लेकिन आपने आवाज लगाई यहां से उस मर्यादा के बाहर व्यक्ति को, तो वाणी से गए। फोन से आपने बात करी तो वाणी से पहुंच गए ना आप वहां। कैसा उससे क्या फर्क पड़ता है, वो फोन पे आपने चार गालियां सुना दी अमेरिका में बैठे हुए अपने बेटे को, तो उसके दिल को दुखी तो हिंसा हो गई ना। वहां वाणी से भी हिंसा होती है ना, और वो तो कहते मन से भी नहीं जाना, माने वहां की बातों का विचार भी नहीं करना। कहते हमें नहीं लेना, यही तो दिक्कत है कि इतनी गहराई जो जैन दर्शन की है, ये व्रत लेने वाले समझते नहीं है, इसलिए ले लेते हैं और फिर बस हम तो मौन से भोजन करते हैं और फिर ऊं करते रहते हैं, हाथ से इशारा करते हैं, वो लाओ ये लाओ, ये कुछ नहीं है ना। ये दिग्व्रत और देश व्रत और अनर्दन व्रत, इस मर्यादा से इन्हें पाले तो उसमें गुण पैदा होगा, अनुव्रतों में गुण पैदा होगा, क्योंकि मन वचन काय और कृतकार्य तनुमोदना, इन तीनों से पाप होता है। आप कहेंगे ठीक है खुद किया वो तो हुआ पाप, वो कराया वो भी हुआ ही, लेकिन अनुमोदना से क्या फर्क पड़ता है। तो किसी ने किसी को तो चांटे मार दिए, ना आपने मारे ना आपने उसे कहा था तुम मारो, आपने कहा ठीक किया, ऐसे नालायकों के साथ ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए। तो उससे जो प्रोत्साहन मिलता है तो वो दो और जड़ देगा, आज नहीं तो कल जड़ देगा, इसे नहीं तो किसी दूसरे को जड़ देगा। आपने कोई ऐसी दवाई छिड़क दी जिससे जीव मरते हैं, जीवों को मारा, खुद नहीं छिड़की, नौकर से कह दिया तुम छिड़क दे, और किसी ने छिड़क दी तुम्हारे कहे बिना ही, तो कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बराबर नीट एंड क्लीन, सफाई अच्छी रखते हो, तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा ना उससे, तो वो जो और पाप करेगा उसका थोड़ा हिस्सा आपको भी मिलेगा। इसलिए जैन दर्शन में कहते हैं ना खुद करना, ना किसी से कराना, और ना उसकी अनुमोदना करना, काया से नहीं करना, वाणी से नहीं करना, और मन से भी नहीं करना। तो इस तरह है, पहले हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी छोड़े थे, अभी अपन सोचें, जैसे पहले मैंने कहा था ये परस्त्री का त्याग है, तो लोक में तो वैसे ही त्याग ही है भारतीय कानून के हिसाब से ही, है ना, और समाज की मर्यादाओं के हिसाब से भी हम किसी दूसरी मां बहन के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिर इस अनुव्रत का, ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेने का मतलब क्या। तो ये मन वचन काय व कृतकार्य तनुमोदना है, इसका फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट का जो प्रतिबंध है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पे, वो तो ऐसा है कि तुमने अकेले काया से करोगे, जब तक काया से नहीं किया तब तक तुम पर कोई केस नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा था ना जो मिथ्यात्व की भूमिका में भी ये चीजों का त्याग होता है, तो वो सिर्फ ऐसा त्याग होता है कि जिनके करने से राज से दंड मिले और समाज से बहिष्कार हो, ख्याल में है ना। तो ये तो कब होता है, जब काया से करेंगे। तो आप मन में कोई किसी को कितनी भी गालियां देते रहो, किसी को जान से भी मार डालो, तुम पे केस चलेगा क्या, समाज तुम्हारा बहिष्कार करेगा। तो मन की पाप पर गवर्नमेंट प्रतिबंध नहीं लगाती, लगा नहीं सकती, क्यों, काया के पाप पर प्रतिबंध लगाने में ही पसीना छूट जाता है, उसमें वो पूरी तरह सफल कहां हो रही है। रोजाना इतने अपराध हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी मां बहन की इज्जत लूटी जा रही है, कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसा सोचना पड़ रहा है कि अभी के दूसरे मां बहन की इज्जत लूटने वालों को फांसी की सजा दी जाए। जो सजा किसी की हत्या करने में है, वही सजा किसी मां बहन की इज्जत लूटने के लिए भी भारत का कानून पास करने की सोचते हैं सरकार। इसका क्या मतलब, इतना पाप बढ़ गया है, कानून तो प्रतिबंध है ही, सजा भी है, फिर भी नहीं रोक पा रही ना। तो मन की, किसी के मन में विकृति आए उसे कैसे रोकेगी, वाणी की विकृति को वो कैसे रोक सकती है गवर्नमेंट। उसके विरुद्ध एक बहुत बढ़िया तर्क आया है कि यदि हमने किसी माँ बहन की इज्जत लूटने वाले को फांसी की सजा नक्की कर दी, तो कोई भी आदमी किसी माँ बहन की इज्जत नहीं लूटेगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक खतरा ये भी है कि उत्तेजना में आकर और किसी ने किसी माँ बहन पर हाथ उठा दिया तो वो सोचेगा कि अब मेरे को यदि मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये माँ बहन शिकायत करेगी, तो ऐसी स्थिति में फिर मुझे फांसी पर चढ़ना होगा। जैसे मार ही दो ना, तो मारने के बाद भी तो फांसी पर ही चढ़ना है ना, दोनों की सजा तो बराबर ही है। लेकिन एक लाभ है बीच में, क्योंकि ये मर जाएगी तो शिकायत करने वाला तो कोई नहीं रहेगा ना, गवाही सभाएं तो नहीं रहेंगे ना, और इसके जिंदा रहने के बाद में ये सब गवाही सभाएं भी रहेंगे, मेडिकल जांच होगी, क्यों 50 तरह के चक्कर हैं, और हो सकता है वहां कोई गवाही सभाएं देने वाले ही नहीं हो तो कैसे ही नहीं चले। तो इस संभावना से विचार के साथ में हत्याएं भी होने लगेंगी, इसलिए इतनी कठोर सजा नहीं रखनी चाहिए। ये भी तर्क आया, ये तो आज की बात है, हमारे आचार्यों ने ये सब बातें बहुत पहले सोच ली थी, इसलिए उन्होंने कहा सामान्य ग्रस्त को तो सामान्य परिस्थिति का त्याग है, लेकिन जो जो ऊपर बढ़ते हैं तो ना खुद करना ना कराना, ख्याल में आए ना, ना मन से अनुवेदना करना, ना काया से करना, ना वाणी से करना, ना मन से करना, तो धर्म का काम तो मन से शुरू होता है, मन शुद्धि से शुरू होता है, आत्म शुद्धि से शुरू होता है। जिसका मन शुद्ध होगा वाणी भी पूरी तरह से उसी की शुद्ध होगी, काया भी पूरी तरह से उसी की शुद्ध होगी। इसलिए नौ कोटि कहलाती हैं जी, मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना, इनके माध्यम से हमें उन पांचों पापों का त्याग करना। यहां तो आए थे हम अनुव्रतों में, अभी ये पांचों पापों का जितना अपन ने त्याग किया वो कौन सा किया था, स्थूल, जैसे तृष्णा का किया था, ख्याल में आए ना, वहां तो क्या था कि आदमी को मारोगे तो तुम्हें फांसी लगेगी, तुमने मक्खी मच्छर मारने से तो किसी को फांसी नहीं लगती ना, लेकिन अहिंसा अनुव्रत में तुमने क्या किया है, जीवों की भी हिंसा का त्याग किया है, ख्याल में है ना, तो गवर्नमेंट की रोक तो नहीं थी इस पर, वो तो हमने अपने मन से ली है कि नहीं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम आगे आगे बढ़ते हैं तो उन सारे आगे आगे के स्टेप में कुछ ना कुछ वृद्धि होती चली जाती है। बहुत से लोग ये कहते हमने अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं, लेकिन सैकड़ों नौकर रखे हैं, खेती कराते हैं, है ना, हम खुद बिजनेस नहीं करते हैं ये काम को, और हम दूसरों से करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, हम नौकर रख के नहीं करवाते हैं, फिर क्या करवाते हैं कि हम उसे ठेके पे दे देते हैं, क्यों, आप मकान खुद नहीं बनाते हैं और किसी ठेकेदार को ठेके पे दे दिया तो वो कहते चाहे खुद बनाना चाहे ठेकेदार से बनवाना एक ही बात है, क्यों, और अनुबोध ना करना कि इससे बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। अभी अभी मैंने सुना है कि एक महाराज के पास लोग गए कि पंच कल्याण करना है कि 2600 इंद्र इंद्राणी बना, 2600 इतना बढ़िया करना है ना, भूतो ना भविष्य, इतने हाथी से तो कम हाथी नहीं आना, तो वो तो क्या सब, ये तो अनुबोधना ही नहीं कराना भी हो गया ना, तो सब करना तो नहीं हुआ, तो गृहस्थ कौन सा करते हैं, वे भी नौकर चाकरों को ही आर्डर देते हैं है? वो भी दूसरे लोगों से ही करते हैं, वो तो गृहस्थों से भी बढ़ के बात हो गई कि नहीं, लेकिन वे समझते हैं कि हमने थोड़ी किया, हम थोड़ी संवाद है, कुछ नहीं मानो तो अनुमोदना तो है ही है, ये तो वास्तव में आदेश है, वो कहते हम तो आशीर्वाद देते हैं, हालांकि बोर्ड लिखा रहता है उसमें लिखा रहता है फलाने के आदेश से, फलाने की प्रेरणा से, तो आदेश को जब क्रिटिसिज्म होने लगा तो उन्होंने प्रेरणा लिखना शुरू कर दिया, जब प्रेरणा की भी धुनाई होने लग गई तो उन्होंने कह दिया उनके आशीर्वाद से। कितने ही नाम बदलो लेकिन हमारा आदि मन वचन का है उसमें इन्वॉल्व है जगनमल जी, तो उस पाप से हम बच नहीं सकते। और ये बातें तो यहां गृहस्थ धर्म के बारे में इतनी बारीकी से बात की है, साधु हो जाने के बाद तो वह महाव्रत का धारी है, वहां तो इन सब बातों का बहुत दूर का भी रिश्ता नहीं है। ख्याल में है ना? तो मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इन तीनों से पांचों पापों से विरक्त होना, उस क्षेत्र की मर्यादा के बाहर तो पूरी तरह होना, उस क्षेत्र की मर्यादा में भी इस मर्यादा का पालन करना, ये दिग्व्रत और देश व्रत है। अब अनर्थ दंड व्रत क्या है इसकी चर्चा कल के व्याख्यान में। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देखे।